रात के लगभग 8:30 बजे थे। मनाली की ठंडी रात अपने पूरे शबाब पर थी। पहाड़ों की चोटियों पर चांदनी बर्फ को चांदी की तरह चमका रही थी। सड़क के दोनों ओर लगी पीली लाइटें ठंडी हवा में किसी सपने जैसा दृश्य बना रही थीं। रिजॉर्ट के बाहर एक कार आकर रुकी। विशाल पहले उतरा। उसने गहरे नेवी ब्लू रंग का ऊनी ब्लेजर, काले रंग की टर्टलनेक टी शर्ट और ग्रे ट्राउजर पहन रखा था। हाथ में महंगी घड़ी, बाल करीने से सजे हुए और चेहरे पर वही गंभीर व्यक्तित्व। वो जहां से गुजरता, लोग अनायास उसकी ओर देख लेते। दूसरी ओर अंकिता धीरे से कार से उतरी। उसने गहरे मरून रंग का लंबा ऊनी अनारकली सूट पहना था, जिस पर हल्की सुनहरी कढ़ाई थी। उसके ऊपर क्रीम रंग की गरम शॉल थी। कानों में छोटे मोती के झुमके, माथे पर छोटी सी लाल बिंदी और खुले बालों की हल्की लहरें उसके चेहरे को और भी कोमल बना रही थीं। ठंडी हवा का झोंका आया तो उसके बाल चेहरे पर आ गिरे। उसने घबराकर उन्हें कान के पीछे किया। विशाल की नज़र अनायास उसकी ओर उठी। बस दो पल, फिर उसने तुरंत नज़र दूसरी तरफ कर ली। चलो, उसने हमेशा की तरह संक्षेप में कहा। अंकिता उसके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही देर बाद वे मनाली के एक प्रसिद्ध और बेहद शानदार रेस्टोरेंट पहुंचे। बाहर लकड़ी की खूबसूरत इमारत रंग बिरंगी रोशनियों से सजी हुई थी। भीतर धीमा संगीत बज रहा था। बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियों से बाहर बर्फ से ढकी वादियां दिखाई दे रही थीं। मेज़ों पर जलती छोटी मोमबत्तियां पूरे माहौल को बेहद सुकून भरा बना रही थीं। वेटर उन्हें खिड़की के पास वाली मेज़ तक ले गया। अंकिता बैठते ही फिर बच्चे जैसी उत्सुकता से चारों ओर देखने लगी। कभी छत की लकड़ी की नक्काशी, कभी सामने बैठे विदेशी पर्यटक, कभी बाहर गिरती हल्की बर्फ। उसकी आंखें हर चीज को ऐसे देख रही थीं जैसे पहली बार दुनिया इतनी बड़ी लगी हो। विशाल मेन्यू देखने लगा। क्या खाओगी? अंकिता ने मेन्यू खोला। उसमें लिखे कुछ वो पढ़ ही नहीं पाई। वो धीरे से बोली, आप जो ठीक समझें। विशाल ने बिना ज्यादा सोचे कुछ लोकप्रिय चाइनीज व्यंजन मंगवा दिए। कुछ ही देर में मेज़ पर गर्मागर्म सूप, नूडल्स, मंचूरियन और दूसरी डिशें सज गईं। भाप उठ रही थी, सुगंध भी अलग थी। अंकिता ने पहली बार इतने अलग तरह का खाना सामने देखा। उसने धीरे से चॉपस्टिक उठाई। एक बार, फिर दूसरी बार, नूडल्स बार बार फिसलकर वापस प्लेट में गिर जाते। उसने इधर उधर देखा। आसपास बैठे लोग आराम से खा रहे थे। उसके चेहरे पर हल्की झिझक उतर आई। उसने फिर कोशिश की। इस बार नूडल्स आधे ऊपर आए और फिर वापस गिर गए। वो धीरे से सकुचा गई। विशाल ने ये सब देख लिया। फोर्क से खा लो, उसने सहज स्वर में कहा। अंकिता ने फोर्क उठा लिया, लेकिन अब समस्या दूसरी थी। इतने लंबे नूडल्स कैसे खाए जाते हैं, ये भी उसे समझ नहीं आ रहा था। वो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगी, फिर थोड़ा सा मुंह में रखा। अगले ही पल उसका चेहरा अजीब सा बन गया। मसालों का स्वाद उसके लिए बिल्कुल नया था। उसे घर की बाजरे की रोटी, दाल, गट्टे की सब्जी, केर सांगरी, कढ़ी और दाल बाटी की याद आ गई। वो धीरे धीरे चबाने लगी, लेकिन निगलना भी मुश्किल लग रहा था। विशाल ने पूछा, अच्छा नहीं लगा? अंकिता ने तुरंत सिर हिलाया। अच्छा है, उसकी आवाज में साफ छूट था। विशाल समझ गया। तो खा क्यों नहीं रही? खा रही हूं, उसने फिर थोड़ा सा उठाया, लेकिन इस बार भी वो ठीक से नहीं खा पाई। उसकी उंगलियां फोर्क पर असहज थीं। चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि आसपास बैठे सभी लोग उसी को देख रहे हैं। वो और भी धीरे हो गई। विशाल ने शांत स्वर में कहा, आराम से खाओ, कोई जल्दी नहीं है। अंकिता ने उसकी ओर देखा। हमारे घर में ऐसे खाने कभी नहीं बनते, वो बहुत धीमे बोली। हमारे यहाँ तो राजस्थानी खाना, उत्तर भारतीय खाना, पूरे भारत के अलग अलग पकवान बनते हैं, लेकिन ये मैंने पहले कभी खाया ही नहीं। उसकी आवाज में अपराध बोध था, मानो से लग रहा हो कि ना खा पाना उसकी गलती है। विशाल ने कहा, पहली बार है, सीख जाओगी। लेकिन अंकिता समझ नहीं पा रही थी कि नूडल्स को कैसे संभाले। कुछ देर बाद उसने प्लेट लगभग छोड़ ही दी। विशाल ने देखा कि उसने मुश्किल से 2-3 कौर खाए थे। इतना कम? पेट भर गया, उसने झूठ बोला। विशाल ने हल्का सा भौहें चढ़ाई। झूठ मत बोलो। अंकिता चुप हो गई। उसकी उंगलियां मेज के नीचे एक दूसरे में उलझ गईं। वो नजरें झुकाकर बैठी रही। विशाल ने धीरे से सांस छोड़ी। अगर पसंद नहीं आया था तो पहले बता देती। मैंने सोचा आपको बुरा लगेगा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? आपने इतने मन से मंगवाया। विशाल कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी मासूमियत उसे समझ भी नहीं आ रही थी और परेशान भी कर रही थी। वो हर बात अपने ऊपर क्यों ले लेती है? उसने फिर अपनी प्लेट की ओर देखा। अब उसका भी खाने का मन नहीं रहा था। कुछ देर तक दोनों लगभग चुप बैठे रहे। मेज पर रखा खाना वैसे ही रह गया। आखिरकार विशाल ने बिल मंगवा लिया।
रेस्टोरेंट से बाहर निकलते समय ठंडी हवा फिर दोनों से टकराई। अंकिता चुपचाप उसके साथ चल रही थी। उसका सिर झुका हुआ था। उसे लग रहा था कि उसने पूरी शाम खराब कर दी। विशाल भी चुप था। कार में बैठने के बाद कई मिनट तक किसी ने एक शब्द नहीं कहा। सिर्फ इंजन की आवाज और बाहर बहती नदी का शोर सुनाई दे रहा था। रास्ते में एक मोड़ पर कार की खिड़की से चांदनी सीधे अंकिता के चेहरे पर पड़ी। वो बाहर पहाड़ों को देख रही थी। उसकी आंखों में पहले वाली चमक नहीं थी। विशाल ने एक पल उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे वापस सड़क पर ध्यान दे दिया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि गुस्सा उसे अंकिता पर कम, खुद पर ज्यादा आ रहा था। वो जानता था कि जिस लड़की ने कभी ऐसे खाने देखे ही नहीं, उससे सहज होने की उम्मीद करना गलत था, लेकिन उसके स्वभाव में नरमी से ज्यादा कठोरता थी। कुछ ही देर बाद कार रिजॉर्ट के मुख्य द्वार पर आकर रुक गई। दोनों बिना कुछ बोले अपने कमरे की ओर बढ़ गए। रिजॉर्ट के लंबे लकड़ी के गलियारे में सिर्फ उनके कदमों की धीमी आवाज गूंज रही थी। दोनों साथ थे, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी भी साथ चल रही थी।